ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। करगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर राजधानी के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में प्रदर्शनी का आयोजन 26 से 31 जुलाई तक किया जाएगा। दिल्ली सरकार कांवड़ियों की सुविधा के मद्देनजर राजधानी में जगह जगह कांवड़ शिविर लगा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हंसराज कॉलेज के स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर नए प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया और फरीदाबाद में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर 29 जुलाई को जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन होगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत एट 2047। इस बैठक में विकसित भारत पर दृष्टि पत्र के प्रस्ताव पत्र पर चर्चा होगी। नीति आयोग ने बताया कि शासी परिषद की बैठक का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों की जनसंख्या के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शासन और सहयोग की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा भी होगी। नीति आयोग ने बताया कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। इसका सकल घरेलू उत्पाद 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के आंकड़ों को पार कर रहा है। भारत की आकांक्षाएं वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अन्य भागीदारों में मुख्यमंत्री और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री तथा विशेष आमंत्रित सदस्य तथा नीति आयोग के सदस्य और उपाध्यक्ष शामिल हैं। उधर करगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी 26 जुलाई से 31 जुलाई तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निःशुल्क देखी जा सकती है। इस चित्र प्रदर्शनी का उद्देश्य उन साहसी सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान असाधारण बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान का प्रदर्शन किया। इस दौरान ऐतिहासिक तस्वीरें, वीडियो के अलावा करगिल युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदान के बारे में स्कूली बच्चों के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन न केवल आगंतुकों के ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि उन्हें बहादुरी, राष्ट्रप्रेम और सेवा के लिए भी प्रेरित करेगा। भारतीय वायुसेना की अग्निवीर वायु महिलाओं ने आज करगिल दिवस की रजत जयंती पर नई दिल्ली के इंडिया गेट पर पहली ड्रिल की। वायुसेना ने इस अवसर पर करगिल युद्ध के सभी सैनिकों और शहीदों को अपने सैन्य बैंड से देशभक्ति गीतों के माध्यम से संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की। वायुसेना ने देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को भी याद किया। अग्निवीर वायु को अग्निपथ योजना के तहत पिछले साल जून में वायुसेना में शामिल किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर करगिल युद्ध के नायकों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। सेना उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एन राजा सुब्रमणी, नौसेना उपप्रमुख वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन, भारतीय वायुसेना के उपप्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह और सीआईएससी के लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू ने भी करगिल युद्ध में प्राण न्योछावर करने वाले सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज करगिल दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 70% रक्षा उपकरणों का उत्पादन देश में ही किया गया। भारत 80 देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है और करीब 25,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में करगिल विजय रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि आज से 25 वर्ष पहले मिली ये विजय सिर्फ टाइगर हिल पर प्राप्त विजय नहीं थी, बल्कि ये भारत के शौर्य और अस्मिता की विजय थी। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के दौरान प्रत्येक दिन देश का कोई वीर तिरंगे में लिपटा हुआ किसी गांव में पहुंच रहा था। श्री नड्डा ने कहा कि करगिल का युद्ध सिद्ध करता है कि भारत किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई उस पर हमला करने की गुस्ताखी करता है तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार कांवड़ियों की सुविधा के मद्देनजर राजधानी में जगह जगह कांवड़ शिविर लगा रही है। इसी कड़ी में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा आज खिचड़ीपुर शिव कांवड़ सेवा समिति शिविर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर श्री राय ने बताया कि पूरी दिल्ली में करीब 185 कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर कैंप पूरी तरह से वाटरप्रूफ हैं। इन शिविरों के अंदर मेडिकल से लेकर पानी, सोने के लिए बेड, कूलर और शौचालय समेत सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध होगी। श्री राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी जिला प्रशासन को कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए हर जरूरी कदम सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित छात्र अक्षित शर्मा को उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसे मंजूरी दे दी है।
अक्षित शर्मा और उनकी बहन अक्षिता का साल 2017 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला था। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार देश और समाज के लिए बहादुरी दिखाने वाले बच्चों के साथ खड़ी है। दिल्ली सरकार एक स्कीम के तहत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले दिल्ली के छात्रों को उनके उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसी के अंतर्गत छात्र अक्षित शर्मा को MBBS की फीस और स्टेशनरी के लिए 25 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही LLM पूरा करने वाली उनकी बहन अक्षिता शर्मा को भी दिल्ली सरकार ट्यूशन फीस के लिए पिछले सालों से अनुदान दे रही है। करिश्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज बिजवासन गांव में 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस राशि से इलाके में मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनसे गांव के लोग अभी तक वंचित हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की अनदेखी के कारण दिल्ली देहात के लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। उन्होंने कहा कि आज गांव के लोगों के लिए न पीने का पानी है और न ही पक्की सड़कें हैं। इस अवसर पर श्री बिधूड़ी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना और DDA के उपाध्यक्ष सुभाषीष पांडा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि DDA द्वारा दिए गए 1,000 करोड़ रुपए से दिल्ली के गांवों में सड़कें, नाले नालियां, स्ट्रीट लाइट, घरेलू और बरसाती पानी की निकासी का प्रबंध किया जाएगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आज कहा कि राजधानी में जल भराव की समस्या सुधारने में दिल्ली सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है।
श्री यादव ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने 2001 में दिल्ली ड्रेनेज सिस्टम के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। नालियों और नालों की सफाई के लिए अलग अलग प्लान बनाए गए थे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और नगर निगम की लापरवाही के कारण जल भराव से दिल्ली की अधिकतर छोटी कॉलोनियों में रहने वाले लोग परेशान हैं। श्री यादव ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई बार ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए काम शुरू किया, लेकिन दिल्ली में जल भराव की समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। करिश्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह।
वहीं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर साल मॉनसून से पहले नालों की सफाई का काम किया जाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि इस साल ज्यादातर नालों की सफाई नहीं की गई। श्री सचदेवा ने कहा कि इस मॉनसून में दिल्ली को अब तक की सबसे खराब जलभराव संकट का सामना करना पड़ा है। पहले मॉनसून की शुरुआत में जलभराव कुछ घंटों में साफ हो जाता था, लेकिन आज पानी 10 से 12 घंटे तक जमा रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम ने जलभराव संकट को सुलझाने में दिल्ली वासियों को पूरी तरह विफल कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के 77वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कॉलेज के नए प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। श्री धनखड़ ने प्रख्यात शिक्षाविद और राष्ट्रवादी महात्मा हंसराज की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, साथ ही कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, डीएवी कॉलेज प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रीतम पाल, लोकसभा सांसद नवीन जिंदल सहित कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण राष्ट्र के विकास में बाधक है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न केवल व्यक्ति बल्कि समग्र समाज को बदलता है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कराधान प्रणाली को सरल और कागज रहित बनाने के सरकार के प्रयासों को दोहराया है। आज नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित बजट पश्चात सम्मेलन में श्री मल्होत्रा ने कहा कि सरकार कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेश बढ़ाने, विकास को गति देने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि बजट 2024 देश के आर्थिक भविष्य की तस्वीर पेश करता है। उन्होंने बजट को आर्थिक वृद्धि, रोजगार, विकास और अवसरों की उपलब्धता की दिशा में एक रोडमैप बताया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें सरलीकरण और मानवीकरण और प्रक्रियाओं को आसान बनाने और मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा से संबंधित कई बातें शामिल हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर 29 जुलाई को जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। जिला बाल कल्याण अधिकारी पिंकी ने बताया कि सेक्टर 17 स्थित मॉडर्न स्कूल के ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस सेमिनार में हरियाणा के राज्यपाल और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। जिला बाल कल्याण अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल दत्तात्रेय नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी करेंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने लाजपत नगर से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उसके पास से 512 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक ड्रग तस्कर नशीली दवाओं की तस्करी में लिप्त है, जो भारी मात्रा में ड्रग्स पहुंचाने वाला है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर कथित ड्रग तस्कर हसन रजा उर्फ हाजी हामिद को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी में आज ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहे, वहीं कुछ इलाके में हल्की बूंदाबांदी हुई। आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। करगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर राजधानी के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में प्रदर्शनी का आयोजन 26 से 31 जुलाई तक किया जाएगा। दिल्ली सरकार कांवड़ियों की सुविधा के मद्देनजर राजधानी में जगह जगह कांवड़ शिविर लगा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हंसराज कॉलेज के स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर नए प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया और फरीदाबाद में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर 29 जुलाई को जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।